नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए मतदाता सूचियों का मसौदा जारी किया। आयोग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल और अंडमान निकोबार का मसौदा जारी किया है। एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत 4 नवंबर को 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हुई। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। मतदाता सूचियों के व्यापक संशोधन का समापन अगले वर्ष 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। जिन मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अगले साल 22 जनवरी तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सुनवाई और सत्यापन 14 जनवरी तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को होगा। उधर पश्चिम बंगाल में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, उनकी सुनवाई का पहला चरण शनिवार से शुरू होगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत पहले चरण में कोलकाता में लगभग 32 लाख ऐसे मतदाताओं को शामिल किया जाएगा जिनके नाम सूची में दर्ज नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम सहित 4 श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए हैं। पद्म विभूषण प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8 वैज्ञानिकों को विज्ञान श्री पुरस्कार और 14 युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान युवा श्रेणी के अंतर्गत सम्मानित किया गया, जबकि विज्ञान में टीम पुरस्कार अरोमा मिशन सीएसआईआर को दिया गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को किसानों तथा श्रमिकों के कल्याण के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया है। आज राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर देशभर के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद में श्री चौहान ने कहा कि इस अधिनियम में किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए सशक्त प्रावधान शामिल किए गए हैं।
किसान भाइयों, हमने इस योजना में प्रावधान किया है 125 दिन रोजगार के साथ साथ जब 1,51,282 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है तो मुझे आप बताओ, गांव का विकास होना चाहिए कि नहीं? इससे इसको विकसित भारत इसलिए कहा है कि इस योजना में गांव की पंचायती प्लान बनाएगी गांव के विकास का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा है कि महिलाओं के नेतृत्व में भारत का पहला समझौता है। उन्होंने कहा कि वार्ताकारों में लगभग सभी महिलाएं थीं। श्री मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि भारत के आज के मुक्त व्यापार समझौते केवल शुल्क कटौती तक ही सीमित नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लाखों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के व्यापक मिशन का हिस्सा है। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में आज 10 महिला कार्यकर्ताओं सहित 22 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस महानिदेशक वाईबी खुरानिया ने कहा कि सरकार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को सुनियोजित पुनर्वास सहायता प्रदान करेगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज बताया कि भगोड़े अपराधी ऋतिक बजाज को संयुक्त अरब अमीरात यूएई से भारत वापस लाया गया है। नशीले पदार्थों की तस्करी और आपूर्ति से संबंधित मामलों में दिल्ली पुलिस को बजाज की तलाश थी। विदेश और गृह मंत्रालय के सहयोग से तथा इंटरपोल के समन्वय से बजाज को दिल्ली वापस लाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर दी है। वे 2017 से उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। हालांकि न्यायालय ने कुछ सख्त शर्तों के साथ उन्हें यह राहत दी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का आज रायपुर में निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे। श्री शुक्ल को हाल ही में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि हिंदी साहित्य जगत में विनोद कुमार शुक्ल का बहुमूल्य योगदान हमेशा याद किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।